ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांतिवन के आंगन में आप हम सभी तपस्या का सुख ले रहे हैं। प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाप को आदेश किया और ब्रह्मा बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी को उनके उशारों को कैच करके चल पड़े साधना के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, विश्व परिवर्तन के मार्ग पर। और परमात्मा के आशीर्वाद ने, परमात्मा की दुआओं ने आज इस यज्ञ को यहां तक पहुंचाने के निमित्त बनने का भाग्य ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। आज का विषय है दुआएं प्राप्त करने का आधार आज्ञाकारिता। जीवन के अंदर स्थूल साधन संपत्ति की प्राप्ति एक चीज है, लौकिक डिग्रियों को प्राप्त करना दूसरी चीज है, लेकिन जीवन में दुआओं को, आशीर्वाद को, वरदान को प्राइस को और गिफ्ट को प्राप्त करना ये दूसरी बात है। तो बड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ों की आज्ञा पर चलना पड़े। दुआ कहो, आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, ये सभी की प्राप्ति का आधार आज्ञा, सेवा, फरमान। तो हमें अपने जीवन में दुआओं की आवश्यकता कितनी है, बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता कितनी है। दुआ क्या काम करती है और उन दुआओं को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्या लगन होनी चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी क्या तत्परता होनी चाहिए कि जिससे हम अपने जीवन में दुआओं का स्टॉक इकट्ठा कर सके। जो दुआओं को अच्छी तरह से समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो जो आज्ञाकारी बनने की बात को भी अच्छी तरह समझते वो भी हाथ ऊपर करें। अब देखो दुआओं को अभी मालूम है और आज्ञाकारिता क्या भी मालूम है। अभी इस विषय के बारे में जानने की जरूरत लगती है, लगती है जो कहती ये विषय तो अपने को मालूम है, इसके बदले दूसरा विषय लिया जाए, वो हाथ उठाए। तो अच्छा, मालूम होते हुए भी जानना सुनना समझना आवश्यक लग रहा है, लग रहा है ना? तो सबसे पहली बात तो जीवन में हमें किन बातों को किस विधि से प्राप्त करना है। देखो संसार के अंदर दुआएं किससे मिलती हैं, दुआएं कब मिलती हैं, दुआ ली भी जाती है, दुआ दी भी जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि एक दिन अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक देखो कि आज के दिन में मैंने दुआ ली कितनी और दुआ दी कितनी है। दुआओं का चार्ट देखो। अब देखो दुआएं मिलती कब है, दुनिया में भी कहते हैं हे भगवान दुआ करो, अथवा बड़े लोगों से कहते हैं आपकी हमारे पर दुआ हो। तो जब अगर हमें दुआ प्राप्त करनी है तो हमारा व्यवहार, हमारी मनसा वाचा कर्मणा, हमारा संबंध संपर्क ऐसा हो जिसके द्वारा सबको सुख मिले। जब सबको सेवा मिले, सबको सहयोग मिले, सबको सुविधा मिले, तो ऑटोमेटिक सामने वाले के दिल से निकलेगा भगवान इसका भला करे, भगवान इसका कल्याण करे, आपका बहुत अच्छा हो। तो दुआएं सारी दुनिया से लेनी है। दुआ देने की बात है। अगर हमारे दिल में कदर, दूसरों के कार्यों का महत्व, दूसरों ने हमारे लिए कुछ भी किया है जाने अनजाने, उसकी हमें अंदर में महसूसता है, एहसास है कि ये मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जब हमारे दिल में ये भाव होता है तब हमारे दिल से स्वाभाविक निकल आता है इनका भला हो, भगवान इनका भला करें, उनको सफलता मिले, उनको हमारा साथ चाहिए तो भी देने तैयार हो जाएंगे। तो ये है दुआएं। दुआ के ऊपर आशीर्वाद है। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है आज्ञाकारी बनने से। बड़े छोटे साथी हमारे से अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा के प्रति हमारे प्रति आज्ञा करते हैं कि हम ये कार्य करें, हम ये सेवा करें या हम ये ना करें। बड़े हमारे साथ के संबंध के हिसाब से, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए हमें आज्ञा करते हैं। अब उस आज्ञा को एक है मानना और दिल से मानना, दूसरा है मजबूरी से मानना, तीसरा है मानना ही नहीं। बड़ों की आज्ञा के प्रमाण चलना, मजबूरी से चलना या चलना ही नहीं, ये तीन ही विधि है। अगर हम दिल से चलते हैं तो उसका पुण्य भाग्य बहुत बड़ा होता है, चाहे वो बात आपको पसंद हो नहीं हो, चाहे वो बात आपसे हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये बड़ों की आज्ञा है, अगर बड़ों के प्रति इतना रिस्पेक्ट रख करके हम चलते हैं तो बड़ों की तरफ से बल मिल जाता है, बड़ों का कहना माना बल मिल जाना। मैं साकार बाबा और हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, अव्यक्त बाप दादा, इन सभी के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने की भाग्यवान बनी हूं और उसका प्रारब्ध इतना ज्यादा मिला है कि वो वर्णन करने में तो ऑर्डिनरी लगेगा लेकिन जीवन की अनुभूति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक होता है हम आज्ञा लेने जाते हैं, बड़ों की चाहनाओं को देख करके जीवन में चलना, दूसरा है बड़े अपने आप आज्ञा करते हैं, तीसरा बड़े कुछ कहना चाहते हुए भी हमें नहीं कह पाते हैं ये सोच करके कि अगर मैं कहूं और उस बात पर नहीं चले तो अवज्ञा का बोझ चढ़ जाएगा। एक बार बड़ी दीदी जी ने हम लोगों को सुनाया था, तो किसी बच्चे को, भाई को कोई काम कहने का था, तो बाबा ने मम्मा को कहा होगा, मम्मा ने बड़ी दीदी को कहा होगा, तो बड़ी दीदी ने कहा कि मम्मा ये बात तो आप कहो वा बाबा कहे, मैं उसको कहूं उससे अच्छा है, आपके कहने का वजन ज्यादा रहेगा। तो मम्मा ने उस समय कहा कि नहीं दीदी, आप ही कहो, उनको सुना क्या हो, कह करके आए। उस भाई ने मना कर लिया, वो काम करने के लिए मना कर लिया। बड़ी दीदी आई मम्मा के पास, सुनाया, मम्मा ने इनका रहस्य सुनाया कि देखो बाबा ने क्यों नहीं कहा, बाबा अपने बच्चों पर अवज्ञा का बोझ चढ़ाना नहीं चाहता है। भगवान कहे और बच्चा न करे तो अवज्ञा का बोझ चढ़ जाएगा, और किसी आत्मा ने कहा और नहीं किया तो इतना बोझ नहीं चढ़ेगा। बड़े कहे हम नहीं करे तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। फिर दूसरी बात, सामने से आज्ञा करते हैं, हम उस पर चलते हैं तो कितनी अधिक प्राप्ति होती है उसका एक मिसाल है। काफी साल हो गए पांडव भवन में, अव्यक्त बाप दादा कुटिया में आया करते थे कभी कभी, छोटा ग्रुप होता था तो बाबा अपनी कमरे में आते थे, कुटिया नहीं कमरे में आते थे। तो बाप दादा को आने का था और म्यूजियम में बहुत सेवा होंगी, तो दादी कुमारका जी ने दो चार को कहा होगा म्यूजियम पर सेवा के लिए जाने के लिए। फिर वो बात लास्ट में मेरे पास आई, कोई जाने तैयार नहीं हुए। दादी जी ने मैसेज भेजा वो चंद्रिका को बताओ। तो जैसे ही दादी ने बोला मैं खड़ी होके म्यूजियम जाने तैयार हो गई, चली गई। अब एक तरफ हमारे दिल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी का आकर्षण है, दूसरी तरफ हमारी यज्ञ की इतनी बड़ी दादी का आदेश है। हमें क्या करना चाहिए, वो उसी समय हमारे विवेक की परख है। भगवान बाबा आ रहे हैं ये भी इतनी ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ साथ हमारा बाबा का कार्य है और वहां जाने की आवश्यकता है, वहां मुझे आज्ञा हो रही है, मैं तुरंत चली गई। अब हम म्यूजियम सेवा से वापस करीब 9:15 बजे वापस आते थे, आके खाना खाते थे, तो मैं आकर के भंडारे में भोजन करने बैठ गई। मुझे ये भी मालूम नहीं था अभी बाबा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बाबा कमरे में आते थे, तो मुझे भोजन पर बुलाने आए कि बाप दादा आपको बुला रहे हैं। मैं तो खाना आधे में छोड़कर भागी। खाना आधे में छोड़ करके भागी, बाबा के सामने गई। बाबा ने इतना प्यार से सिर पर हाथ रखा और क्या वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्ची तुम बहुत चतुर हो, तुमने त्याग का पदम गुना भाग्य प्राप्त कर लिया है। त्याग किया ने, पर उस त्याग का भाग्य कितना मिला, भगवान अपने मुख से कहा पदम गुना। अब बताओ वजन किसका बढ़ा, आज्ञाकारी बनकर चलने का। तो बड़े कुछ भी आज्ञा करते हैं, हमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा है आज्ञा लेकर चलना है जीवन में। जिस दिन से मुझे बाबा मिला है और मुझे ये समझ में आ गया कि ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा काम कर रहा है, तो उसी दिन से मैंने जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णय मेरी अपनी अक्ल से लेने की उतावलाई नहीं की है, जल्दीबाजी नहीं की है, कभी मैं अधीर्य नहीं हुई हूं। मुझे बाबा से पूछना है તો એક વારી મેં અમદાવાદ સે ખાસ પાંડવ ભવન ગઈ હૈ બાબા કી રાય લેને કે લિયે. કિસ બારે મેં? મેં એનસીસી મેં અંડર ઓફિસર થી, કોલેજ મેં પઢતી થી. દિલ્હી મેં 26 જનવરી કી પરેડ હોતી હૈ, આપ સબકો માલૂમ હોગા. ઉસ પરેડ મેં મેરા સિલેક્શન હુઆ થા ઓર મુજે હી ટીમ કો લીડ કરકે જાને કા થા. અબ એક માસ દિલ્હી જાને કા, વહાં રહેને કા, વહાં ઉસકા મેડલ મિલતા, તીન ડ્રેસ મિલતે, જાને આને કા કિરાયા મિલતા, બહોત કુછ મિલતા હૈ. તો અંદર મેં બહોત ખુશી થી કે મુજે ઇતના બડા ચાન્સ મિલા હૈ. તો મેં બાબા સે યે પૂછને કે લિયે કે મેં દિલ્હી જાઉંગી, કહાં રહૂંગી, મેરે ખાને પીને કી ધારણા કા ક્યા હોગા, બાબા સે રાય સલાહ કરને મેં ગઈ. બાબા કો મિલી, બાબા સે પૂછા, બતાયા બાબા એસે એસે મુજે દિલ્હી જાના હૈ. તો મેં કહાં રહૂંગી ઓર ભોજન આદિ કા ક્યા હોગા. તો બાબા બહોત મીઠા મુસ્કુરાયા. મુસ્કુરા કરકે મેરે કો કહા, બચ્ચી તેરી કો ડ્રિલ કરના આતા હૈ ક્યા? મેને કહા, હા બાબા. તો બાબા ને કહા, આજ રાત્રિ ક્લાસ મે તુમ ડ્રિલ કરકે દિખાના. ઓર બાબા ને લચ્છુબેન કો બુલાયા. લચ્છુબેન સ્ટોક સંભાલતી હૈ. કહા, લચ્છુ બચ્ચી આઓ. મેં થી વેદાંતી બેન, મેરી દૂસરી બેન ઓર એક મેરી ફ્રેન્ડ, હમ તીન ગયે થી. દેખો ઇન તીનો કો પહેરે વાલે કે નયે નયે ડ્રેસ નિકાલ કે દે દો. આજ રાત્રિ કો યે બચ્ચિયા ડ્રિલ કરકે દિખાયેગી બાબા કો. હમકો તો નયે નયે ડ્રેસ મિલ ગયે. સારા દિન હમને બહોત અચ્છી પ્રેક્ટિસ કી. રાત્રિ ક્લાસ મેં બાબા આયે, બાબા કી મુરલી ચલી, ફિર બાબા ને બુલાયા, અચ્છા ચલો બચ્ચિયા ભી ડ્રિલ કરેગી. તો યે મધુવન કા છોટા હોલ થા, હમ લોગો ને વહાં હમારે લિયે જગહ બીચ મેં ખાલી કર દી, સભી સાઇડ પર હો ગયે. હમને બડે નશે કે સાથ ડ્રિલ કિયા, ડ્રિલ ભી કિયા, બાબા કો સેલ્યુટ ભી કિયા, સભી ને તાલિયા બજાઈ, બાબા ને ભી વાહ વાહ કિયા, બહોત ખુશ કર દિયા, ટોલી દિયા. ઓર બાબા ને કહા, અગર તુમ્હારે જૈસી બચ્ચિયા રૂહાની ડ્રિલ કરાના સીખ જાય તો બહોત સેવા કર સકતી હૈ. એસા બાબા ને બોલા. વો બોલ આજ તો હમારે જીવન કા વરદાન હૈ. સબ પૂરા હો ગયા. બાબા અપને કમરે મેં ચલે ગયે, હમ ભી અપને કમરે મેં ગયે. પર મુજે તો સારી રાત નીંદ નહીં આઈ. ક્યું નીંદ નહીં આઈ? બાબા સે અભી જવાબ તો મિલા નહીં કે મેં કહાં રહૂંગી, મેરે ખાને પીને કા ક્યા હોગા. 18 સાલ કી ઉંમર, બચ્ચે તો થે, કોઈ બહોત બડે નહીં થે. સુબુ જલ્દી જલ્દી ઉઠી, ફિર મુરલી ક્લાસ કરને કે તુરંત બાદ બાબા કે સાથ સાથ મેં બાબા કે પાસ ચલી ગઈ. મેં બાબા સે બહોત ક્લોઝ થી, ક્યોંકિ લગતા થા મેરા હૈ ને બાબા, ભગવાન મેરા હૈ, અભી ઇસમે આયા હૈ, બાબા મેરા હૈ. તો ગઈ, ફિર બાબા કો ધીરે સે પૂછા, બાબા તો આપની યે તો બતાયા નહીં કે અભી મેં દિલ્હી મેં કહાં જાઉંગી ઓર કિસકે પાસ રહૂંગી ઓર ભોજન કા ક્યા હોગા. તો બાબા ફિર મેરે કો દેખને લગે, મુજે બહોત પ્રેમ સે દ્રષ્ટિ દી. દ્રષ્ટિ દે કરકે બાબા ને કહા, બચ્ચી બાબા કો લગતા હૈ તેરે જૈસી બચ્ચી કા એક માસ કા ટાઈમ વ્યર્થ જાય યે બાબા નહીં ચાહતા હૈ. બસ બાબા ને બોલા. દો હી સેકન્ડ મેં મેને બાબા કો જવાબ દે દિયા, બાબા અગર આપ નહીં ચાહતે હૈ તો મેં નહીં જાઉંગી. મેને બાબા કો બોલ દિયા. आप नहीं चाहते हैं तो बाबा मैं नहीं जाऊंगी। बस मैंने बोल दिया बाबा को। आज मैं सोचती हूं तो भी मुझे लगता है कि मैंने कितनी बड़ी टेस्ट पास कर ली भगवान के आगे, हाँ, कि भगवान ने कहा मैंने मान लिया है। नहीं तो ये अट्रैक्शन बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, आप सभी समझ सकते हैं ना। अच्छा, अभी इस त्याग का भाग्य कितना बड़ा ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं। मैं दो दिन मधुवन में ही थी, मैं वेदांती बहन हम सभी, दादी कुमारका जी मुंबई से पांडव भवन आई थी और उस समय के सेंटर्स की टूर पर जाने वाली थी। तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे बुलाया, बच्ची इधर आओ, देखो ये कुमार का दादी बंबई से आई है, वो भारत के सभी सेंटर्स की टूर पर जा रही है, तुम जाएगी? तो मैंने कहा हाँ बाबा। तुम्हारा बाप भेजेगा? मैंने कहा हाँ बाबा, छुट्टी ले लेंगे। हमारे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे तो हमें फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती थी, मुफ्त में जाना था, कोई खर्चा तो करना नहीं था। और पिताजी मान ला जाएंगे ये बात मुझे इसीलिए विश्वास था कि मैं जो दिल्ली जाने वाली थी ने वो उनको इतना पसंद नहीं था, परंतु मैं दादी के साथ बॉम्बे अरे टूर पर जाऊं वो तो उनको जरूर पसंद आएगा। तो मैंने कहा हाँ बाबा हम जाएंगे। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, दादी कुमारका से मिलो, पूरा टूर का प्रोग्राम ले लो, टिकट बनवा के फटाफट आ जाओ। हम तो दादी के पास गए, प्रोग्राम लिया, वापस घर गए। एक सप्ताह के बाद दादी के साथ टूर पर निकलना था। बहुत उमंग उत्साह से अच्छी तैयारी करके हम आए और बाबा ने सभी सेंटर्स पर पत्र डलवा दिया। उस पत्र में क्या लिखा था? दो हंसों का जोड़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बहुत पुरुषार्थी बच्चियां हैं, इन बच्चियों के अनुभव का क्लास जरूर रखना। ऐसा सब जगह बाबा ने लेटर डलवा दिया था। हम तो जब गए हर स्थान पर हमें अनुभव कहने के लिए बोलते थे और सुनाते थे, तब मालूम चला कि बाबा ने ऐसा पत्र भिजवा दिया है। अब देखो ये लाइफ की कितनी बड़ी लॉटरी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी लॉटरी है। हमें उस समय मालूम नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो दादी पूरे यज्ञ का भार संभालने के निमित्त बनी, ऐसी यज्ञ की मुख्य प्रशासिका बनने वाली दादी के साथ पूरा लगभग एक मास टूर करने का हमें जो चांस मिला, ये जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है। दादी के साथ जाना, दादी के साथ मुसाफरी करना, दादी के साथ खाना पीना, दादी से बातें सुनना, और दादी हमारी केयर करती थी, तुमने खाया, तुमको रहने को ठीक मिला है, तुमको कुछ चाहिए, कितना बड़ा भाग्य मिला। ये भाग्य किससे मिला? आज्ञाकारी बनकर चलने का भाग्य है। ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने ही कहो या बाप दादा ने कहो, आज्ञा कर ली कि आज्ञा भी नहीं, बाबा ने तो कहा सहज भाव से कि बाबा नहीं चाहता है कि तुम्हारा एक मास का टाइम वेस्ट हो। अपनी चाहना को भी छोड़ दिया और बाबा की चाहना को, बाबा की आज्ञा को महत्व दिया, तो कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ। तो ये हमारे अपने विवेक पर है। कि हम बड़ों की आज्ञा को कितना समझ पाते हैं। देखो बड़े बड़े हैं, बड़ों ने अपने जीवन के अंदर सब प्रकार के अनुभवों को क्रॉस किया हुआ है। जब वो हमें कुछ कहते हैं, या तो हमें सेफ करने के लिए कहते हैं, या तो हमें मदद रूप बनने के लिए कहते हैं, या तो हमें आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। उनों के कहने में जो भी भाव समाया हुआ हो, उस समय हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन बड़ों की आज्ञा श्रोमण्य। दादी कुमारका ने एक बार मेरा टेस्ट पेपर लिया, उनके मन में टेस्ट पेपर नहीं, पर मेरे लिए तो टेस्ट पेपर ही था। एक ब्रह्मा बाबा ने लिया, दूसरा अव्यक्त बाप दादा ने लिया, अब तीसरा दादी प्रकाशमणि जी ने लिया। यज्ञ में पहली पहली कुमारियों की ट्रेनिंग थी, और वो ट्रेनिंग में कॉलेज की कुमारियों को बुलाया था। करीब 35 कुमारियां उस ट्रेनिंग में हम एक मास के लिए आए थे। उस समय तो बाप दादा बार बार आया करते थे, तो हमारी भट्टी का उद्घाटन होना था, बाप दादा द्वारा हुआ, बाबा ने हमें तिलक दिया। तो उस भट्टी के उद्घाटन पर 5-7 कन्याएं बाबा से तिलक लेकर के आगे गई। मेरा नंबर आया, बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची बताओ कौन सा नंबर लेंगी। मैंने कहा बाबा फर्स्ट नंबर। बस बाबा ने मुझे टोली दी। फिर मेरे बाद जितने भी आए, उन्होंने बाबा ने पूछा कौन सा नंबर लेंगे, तो सभी ने क्या कहा, फर्स्ट नंबर। तिलक लग गया। दूसरे दिन सुबह से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, कुंज दादी, नलिनी दीदी, ये सब हमारी टीचर्स थी ट्रेनिंग की। दूसरे दिन मुरली क्लास पूरा हुआ। मुरली क्लास पूरा हुआ और दादी कुमारका ने मुझे बुलाया, चंद्रिका इधर आओ, देखो तुम्हारे को ट्रेनिंग में नहीं जाना है, म्यूजियम में सेवा की जरूरत है, इसीलिए अभी आज से तुम्हें रोज सुबह 9 बजे म्यूजियम सेवा में जाना है, रात्रि को 9 बजे वापस आना है। ठीक है दादी। अब ट्रेनिंग लेने की तो दिल की जिगरी इच्छा थी, लेकिन दादी ने कह दिया, मैंने कह दिया ठीक है दादी, और मैंने वो रूटीन शुरू किया। लेकिन मुझे ट्रेनिंग तो पूरी करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कोई युक्ति बनानी पड़ेगी। तो मैंने 2 फ्रेंड बना ली मेरी, एक हमारी आशा दीदी, दूसरी हमारी शिलू दीदी। दोनों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सारा दिन भर जो क्लास चले ने, वो आप लोग मुझे रात्रि को आपकी डायरी देना। दोनों को इसलिए कहा कि एक ने मिस किया होगा तो दूसरे में तो मिलेगा, इसने मिस किया होगा तो इसमें मिल जाएगा। रात को 9 बजे आकर के भोजन करके, तब तो बहुत छोटा यज्ञ था हमारा, तो पांडव भुवन में शांति सम के सामने जो कमरे हैं, ट्रेनिंग सेंटर उसको कहते थे, तो वहां पर हमारे रहने का प्रबंध कैसा था, सभी को पट में रहना होता था, बिस्तर मतलब बेड नहीं होते थे, पट में सोने का, और सभी का सामान एक ही कमरे में मिलिट्री की तरह दीवार को लगा के ऐसे चारों तरफ रखे जाते थे। उसी में एक छोटा लाइट का बल्ब चालू रहता था, बाकी 9:30 बजे लाइट्स बंद। ये दिनचर्या थी। रात्रि को वो दोनों डायरी लेकर के मैं वो सामान वाले कमरे में चली जाती थी। वहां बैठ करके जो भी क्लासेस हैं वो लिख लेती थी। उस लिखने में कभी 1 बज जाता था, कभी 1:30 बज जाता था, कभी सुबह भी हो जाती थी, लेकिन मैं सारे क्लास लिख लेती थी दोनों डायरी से देख करके। और फिर दिन में म्यूजियम में भोजन के बाद 1 बजे फ्री होते थे 4:30 बजे तक, तो दिन में वहां पर वो सारा पढ़ लेती थी अच्छी तरह से, ध्यान से उसको रीड कर लेती थी। 15 दिन के बाद दोबारा बाबा आए। बाबा ने फिर से एक एक कुमारियों के साथ मुलाकात की। मेरा टर्न आया, बाबा ने मेरे से पूछा, अच्छा बताओ कितनों को आप समान बनाओगी? तो मैंने कहा बाबा 3-4 को। तो बोला ऐसे 3-4 नहीं, फिक्स बताओ। तो मैंने कहा 3 को। तो जब मैंने ये कहा तो हमारे साथ जो बहनें थी, सखियां थी, तो पूछने लगी कि आप किनों को आप समान बनाने वाली हो? मैंने कहा बहन ऐसा नहीं सोचा, ये तो बाबा ने पूछा तो कुछ तो जवाब देना पड़े ने। अच्छा, अभी उसी दिन के बाद हमारी चारों ही दादियां वो साथ में थे, मुझे कहा चंद्रिका तुम दादी को बोलो कि तुम्हें ट्रेनिंग में आने की परमिशन देवे। मैंने कहा मैं दादी को कैसे कहूंगी? मैं दादी को ये नहीं कह सकती हूं, मुझे जो दादी कहेंगी वो करेंगी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमारी उन दादियों ने, नलनी दीदी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, उन्होंने दादी को कहा कि दादी अभी चंद्रिका बहन को 15 दिन के लिए ट्रेनिंग की छुट्टी दो। तो 15 दिन के लिए 15 दिन चले गए थे। ट्रेनिंग में रहने की परमिशन मुझे दादी ने दिया। ठीक है, अभी ये हमारी इतनी दादियां कहती हैं तो इस दादी को मानना पड़ेगा ना। अच्छा चलो तुम 15 दिन के लिए ट्रेनिंग ले लो। तो बाद में 15 दिन ट्रेनिंग में रही। उस ट्रेनिंग के अंदर बाकायदे हमारी ट्रेनिंग बहुत विधिपूर्वक होती थी, कर्मणा की, दिनचर्या की, सारे यज्ञ की, सफाई की, सेवा की। 15 दिन के बाद हमारे 3 पेपर हुए, एक प्रैक्टिकल का पेपर और 2 थियरी का पेपर। प्रैक्टिकल के पेपर में हमें कई प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न ये पूछा था कि क्या 1 मास की ट्रेनिंग के बाद आप नेक्स्ट 1 मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स पर जाएगी? और दूसरा ये पूछा था कि आप अपना जीवन समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहती हो? ये 2 जो एकदम डिसीजन लेने वाले क्वेश्चन थे। मैंने दोनों में हाँ कर दिया, हालांकि बंधन था, माँ बाप की ऐसी कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन सोचा मिल जाएगा, भगवान साथ हैं तो क्या बड़ी बात है। उस ट्रेनिंग के अंदर बाप दादा फिर आए। जिस दिन बाबा आए, अर्जुन मुरली प्रारंभ होने के पूर्व ही बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची बाबा को क्यों बुलाया है? अब बाबा तो अपने प्रोग्राम से आए थे, लेकिन मुझे पूछा तो मेरे को कुछ जवाब देना चाहिए। मैंने कहा बाबा हमारी ट्रेनिंग का रिजल्ट देने के लिए। तो बाबा ने कहा अपना रिजल्ट तुम नहीं जानती हो। मैंने कहा बाबा वैसे जानती हूँ, लेकिन जो आप कहेंगे वही फाइनल माना जाएगा। फिर बाबा ने जितनी कुमारियां थी सभी को भी पूछा इस ट्रेनिंग में पहला नंबर किसको मिलता है, और सभी ने एक आवाज से जवाब दिया चंद्रिका बेन। तो बाबा ने मान नहीं लिया, बाबा ने क्या किया एक एक से फिर पूछा तुम क्यों देती हो, तुम क्यों देती हो, तुम क्यों देती हो, तुम क्यों देती हो, तुम क्यों देती हो। और उसके बाद बाबा ने जो सुनाया पहले नंबर का आधार क्या, अवगुणों का त्याग और गुणों का दान, किसी की कमी कमजोरी अवगुणों को नहीं देखना, त्याग ये विशेषता, और करके सिखाना ये गुण का दान। इसी के आधार पर प्यारे बाबा ने उस ट्रेनिंग में मुझे प्रथम नंबर दिया। अब यहां पर दादी कुमारिका जी ने मेरा ये पेपर लिया कि मुझे कहा तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं जाना है, ना मैंने अवस्था खराब की, ना मैंने एक भी संकल्प चलाया, मुझे प्राप्ति अनेक गुनी हुई, मेरी कोई कमी नहीं हुई। तो एक है बड़े अपने आप डायरेक्ट हमारी योग्यता को देख करके, समय की आवश्यकता को देख करके हमें आज्ञा करते हैं, हमें जी हजूर करके उस पर चलना चाहिए। वो दुआएं किस रूप में मिलती हैं, कितने लंबे तक मिलती हैं, उसका हिसाब हम नहीं निकाल सकते हैं। आज मेरे जीवन में मेरा दिल साकार बाबा के प्यार से, अव्यक्त बाप दादा की पालना से, दादियों की पालना से इतना भरा हुआ है, इतनी दुआएं, इतने आशीर्वाद, इतने वरदान। एक बार अभी की अनुभव की बात है, मैं ज्ञान सरोवर सेवा के लिए आई थी, अहमदाबाद जा रही थी, दादी जानकी जी से छुट्टी लेने के लिए दादी के कमरे में गई। तो दो दिन के बाद कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था यज्ञ में, तो दादी ने कहा जा रही हो तुम? मैंने कहा हाँ दादी, ऐसे प्रोग्राम था और वहां अहमदाबाद में मेरा जरूरी काम भी था, बना हुआ होता है प्रोग्राम। तो दादी ने कहा दादी चाहती है तुम रुक जाओ दो दिन। मैंने कहा ठीक है दादी। मैंने अहमदाबाद फोन कर लिया कि वो दोनों कार्यों के लिए आप फोन करके बता दो, बाद में जो होना होगा कर लेंगे, अभी मैं नहीं आ रही हूं, दादी की आज्ञा है मैं यहां रहूं। और सचमुच वो इवेंट को अटेंड करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, कभी भी किसी भी कार्य के लिए, हम तो है ही रूहानी मिलिट्री, हमारा जीवन यज्ञ के लिए है और पूरे विश्व के लिए है। जब हम है ही रूहानी वॉरियर्स तो हमें किसी समय भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। दुनिया के हिसाब से मिलिट्री में ये रूल होता है, अगर बड़ों की अफसरों की आज्ञा को नहीं माना सूट एंड साइड। दुनिया कायदे पर चल रहे हैं, बाबा हमें प्यार से चला रहा है, बड़े हमें प्यार से चला रहा है। अगर वो अधिकार हाथ में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो हमें ईश्वरीय पालना देते हैं। बड़ों के आदेश को, बड़ों की आज्ञाओं को, बड़ों के इशारों को समझकर चलने से हमें बहुत दुआएं मिलती हैं। दुआ ही हमारी प्रगति का आधार है वास्तव में देखा जाए तो। बहुत महीन बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। दूसरा, जीवन में एक सावधानी ये रखनी है, हम किसी के दिल को हर्ट नहीं करें, किसी को बद्दुआ नहीं करें, किसी के लिए ऐसा ऐसा बोल नहीं बोले। हम दुआएं लेने के अधिकारी भी हैं, लेकिन हम दुआएं देने के योग्य भी बने। ये जीवन बहुत मूल्यवान जीवन है। टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़े में मैं दुआ, आशीर्वाद, वरदान, गिफ्ट और प्राइज को स्पष्ट करती हूं। दुआ मिलती है दूसरों को, दूसरों की दिल से सेवा करने से। आशीर्वाद मिलती है आज्ञा पर चलने से। वरदान मिलते हैं अपनी साधना और अपनी सेवा के द्वारा औरों को प्रसन्नता देने से, औरों के पास वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार बाप दादा और दादियों के पास है, वरदान देने का अधिकार। हमारी सेवा से, हमारी धारणाओं से, हमारे समर्पण भाव से प्रभु और हमारे बड़े इतने प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्नता से जो बोल बोलते हैं वो हमारे वरदान होते हैं। गिफ्ट तो बहुत ऐसे भी मिल सकती हैं, बर्थडे पर गिफ्ट मिलती है, कोई प्रसंग पर गिफ्ट मिलती है, एक दो के पास जाते आते हैं, प्रेम के स्वरूप में गिफ्ट लेके जाते हैं। प्राइज, लाइफ में प्राइज मिलना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। प्राइस कब मिलती है? जब बहुत लोगों के तरफ से आपके कार्य को पूर्णता की एप्रिशिएशन मिले कि बहुत अच्छा किया है, सभी सर्टिफाई करें, तब प्राइस मिलता है। हमें अपने जीवन में भगवान के यज्ञ से प्राइज मिले, ऐसी इस जीवन में सेवा, साधना, समर्पण करना है और हमेशा बड़ों की आज्ञाओं के पर, इशारे पर, भावनाओं के पर चलकर आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बनना है। ओ। Yeah.
करे सारा जग जिनको याद करे वे याद प्यार हमें देते हैं
बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा की चले निरहंकारी
सबसे महान संसार आपके हाथों में पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में मुझसे आगे हो तुम बच्चों मुझसे आगे हो तुम बच्चों कह कर के बेहद सेवा अब भी करते बाबा है आपकी बलिहारी कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी सब काम आप खुद करते हैं सब काम आप खुद करते हैं और मान सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा देते शिक्षा देते शक्ति देते गुण ज्ञान खजाने भर देते निष्काम आपकी सेवाएं निष्काम आपकी सेवाएं उपहार स्वर्ग हमें देते
बाबा कितने निर्दयी।